एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का स्वागत।
नमस्कार।
आज हम थिएटर की दुनिया में जरा गहरे उतर रहे हैं और साथ हैं एक ऐसे विचारक जिन्होंने इस कला को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया, मार्विन कार्लसन।
हाँ, आज हम उनके दो बहुत ही अहम कामों के सार पर बात करेंगे। एक है थिएटर और दूसरी थिएटर अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि थिएटर आजकल जब इतने सारे ऑप्शंस हैं, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, गेम्स हैं, तब थिएटर क्यों क्यों जाए कोई एक हॉल में नाटक देखने?
हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है और मुझे लगता है कार्लसन इसी का जवाब देते हैं ना।
हाँ, और बहुत ही दिलचस्प तरीके से। वो बताती हैं कि थिएटर सिर्फ मतलब एंटरटेनमेंट या कहानी सुनाना भर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है।
ज्यादा गहरा है।
हाँ, ये समाज को, खुद को समझने की और एक कम्युनिटी के तौर पर जुड़ने की एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल मानवीय जरूरत है।
अच्छा।
कार्लसन के नजरिए से देखें तो थिएटर का जो रोल है, जो उसकी भूमिका है, वो सिर्फ मनोरंजन नहीं है। उसका काम है संवाद करना, विचारों को छेड़ना, हमें जोड़ना। तो आज हम इसी रोल और इसके लक्ष्य को समझने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले मार्विन कार्लसन के बारे में थोड़ा जानते हैं। कौन है ये और थिएटर की दुनिया में इनका इतना रुतबा क्यों है?
मार्विन कार्लसन, जैसा कि मैंने कहा, थिएटर और परफॉर्मेंस स्टडीज की फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है। वो न्यूयॉर्क के सिटी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट सेंटर में थिएटर, कंपैरेटिव लिटरेचर और मिडल ईस्टर्न स्टडीज के मतलब एमेरिटस प्रोफेसर रहे हैं। काफी लंबा उनका एकेडमिक सफर रहा है।
दशकों का अनुभव और सुना है उन्होंने किताबें भी काफी लिखी हैं, जैसे थ्योरीज ऑफ द थिएटर।
हाँ, दर्जन भर से ज्यादा किताबें। और उनके काम को जो चीज खास बनाती है वो है उनका नजरिया। वो सिर्फ वेस्टर्न थिएटर या उसके इतिहास तक ही खुद को सीमित नहीं रखते।
अच्छा।
वो थिएटर के सिद्धांत, दुनिया भर की परंपराएं, चाहे यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, सबको एक साथ लेकर चलती हैं। उन्होंने भाषाएं सीखी हैं, दुनिया घूमी है, अलग अलग परफॉर्मेंस ट्रेडिशंस को बहुत करीब से देखा है।
मतलब सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि जमीनी अनुभव भी है।
हाँ, बिल्कुल। और सबसे अहम बात ये है कि वो थिएटर को सिर्फ नाटकों का कलेक्शन नहीं मानती। उनके लिए थिएटर एक कॉम्प्लेक्स सेमियोटिक सिस्टम है।
सेमियोटिक सिस्टम, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। आसान शब्दों में क्या मतलब हुआ इसका?
देखो, आसान भाषा में ये संकेतों और प्रतीकों का एक सिस्टम है। जैसे हम भाषा में शब्दों से मतलब निकालते हैं ना,
हाँ,
वैसे ही थिएटर में हर चीज, एक्टर का एक इशारा, उसके कपड़ों का रंग, स्टेज पर रखी एक कुर्सी, यहां तक कि खामोशी भी, वो एक संकेत है। उसका कोई ना कोई मतलब होता है।
अच्छा।
तो कार्लसन क्या करती हैं, वो इतिहास, समाजशास्त्र और ये जो सेमियोटिक्स है यानी संकेतों का विज्ञान, इन सबको मिलाकर समझाती हैं कि थिएटर कैसे इन संकेतों से मतलब बनाता है, कैसे वो समाज के साथ कम्युनिकेट करता है। यही उसका मुख्य रोल है, एक तरह की आप कह सकती हैं मतलब बनाने वाली मशीन की तरह काम करना।
दिलचस्प। तो ये जो किताबें हैं, थिएटर और थिएटर अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ये किस बारे में है? कार्लसन का मुख्य तर्क क्या है थिएटर को लेकर?
कार्लसन का सबसे बड़ा तर्क ये है कि थिएटर कोई मतलब ऐसी वैसी चीज नहीं है, यह सिर्फ कुछ खास लोगों का शौक। ये एक बुनियादी, एक फंडामेंटल मानवीय गतिविधि है।
बुनियादी जैसे?
जैसे हम भाषा बोलते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, वैसे ही परफॉर्म करना और देखना हमारी संस्कृति का, हमारे इंसान होने का एक जरूरी हिस्सा है। ये समाज का आईना है जो हमें दिखाता है कि हम क्या हैं।
आईना तो है, पर क्या सिर्फ दिखाता है?
नहीं, दिखाने के साथ साथ ये समाज को बदलने का एक जरिया भी बन सकता है। इसका लक्ष्य, इसका मकसद सिर्फ नकल करना नहीं है, बल्कि एक समझ पैदा करना है।
तो फिर ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं हुआ, ये तो शिक्षा, उत्तेजना, समुदाय को जोड़ने जैसा काम भी करता है।
बिल्कुल। और इसीलिए वो इसे सेमियोटिक मशीन कहती हैं। संकेतों और प्रतीकों का एक जाल जिसमें एक्टर, दर्शक, जगह, डिजाइन सब मिलकर एक मायने, एक अर्थ बनाते हैं। तो ये किताबें पूछती हैं, थिएटर असल में है क्या चीज, ये काम कैसे करता है और इस डिजिटल जमाने में भी ये क्यों टिका हुआ है, इसका मकसद क्या है आखिर?
तो ये किताबें सिर्फ थिएटर स्टूडेंट्स या कलाकारों के लिए ही जरूरी नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हर उस इंसान के लिए हैं जो कल्चरल परफॉर्मेंस को, चाहे वो नाटक हो, डांस हो, कोई धार्मिक रीति रिवाज हो या फिर कोई पॉलिटिकल रैली ही क्यों ना हो, उसे गहराई से समझना चाहता है।
अच्छा,
कार्लसन हमें किसी भी परफॉर्मेंस को देखने का एक नया चश्मा देती हैं, एक तरीका जिसे हम चीज़ों को एनालाइज कर सकें। ये हमें सतह के नीचे देखने में मदद करती हैं कि भाई यहाँ मतलब कैसे बन रहा है और इस चीज़ का असली रोल क्या है।
चलिए अब जरा कुछ मुख्य आइडियाज को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं थिएटर की उत्पत्ति और परिभाषा से। कार्लसन क्या कहती हैं इसके बारे में? कहाँ से शुरू हुआ है सब?
कार्लसन कहती हैं कि इसकी जड़ें तो शायद मानव इतिहास जितनी ही पुरानी है। ये रिचुअल्स यानी कर्मकांड से, कहानी कहने से और एक समुदाय बनाने की हमारी जो आदिम जरूरतें थीं उनसे निकला है।
मतलब हजारों साल पहले?
हाँ, सोचिए ना, हजारों साल पहले जब इंसान आग के आसपास बैठकर कहानियां सुनाते होंगे, किसी जानवर या देवता की नकल करते होंगे, वही तो था थिएटर का बीज। उसका शुरुआती रोल शायद समुदाय को जोड़ना और दुनिया को समझाना था।
और क्या इसकी कोई एक तय परिभाषा है कि थिएटर बस यही है?
यही तो मजा है, कार्लसन के मुताबिक कोई एक पक्की परिभाषा है ही नहीं। थिएटर का मतलब, उसका रोल, ये समय और संस्कृति के साथ बदलता रहा है।
जैसे?
जैसे प्राचीन ग्रीस में ये एक नागरिक और धार्मिक ड्यूटी थी, मध्ययुगीन यूरोप में धर्म सिखाने का जरिया बन गया, और आज हम इसे अक्सर एक आर्ट फॉर्म या एंटरटेनमेंट मानते हैं।
तो फिर हम पहचानते कैसे हैं कि ये थिएटर है, ये रोजमर्रा की जिंदगी नहीं? कोई इशारा होता है?
हाँ, कार्लसन इसी को फ्रेमिंग कहती हैं। ये वो संकेत होते हैं जैसे थिएटर की बिल्डिंग खुद, पर्दा उठना, लाइट का बदलना, एक्टर्स के खास तरह के कपड़े, जो हमें बताते हैं कि देखो, अब जो होने वाला है वो नॉर्मल लाइफ नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस है।
अच्छा, एक फ्रेम बन जाता है।
हाँ, वो फ्रेम हमें मानसिक तौर पर तैयार करता है कि हम कुछ खास देखने और समझने वाले हैं। इसका लक्ष्य ही यही है कि दर्शक उस अनुभव के लिए तैयार हो जाए।
ये फ्रेमिंग वाली बात तो सही में सोचने वाली है। अब आते हैं दर्शक पर। हम अक्सर सोचते हैं कि दर्शक तो बस बैठा है, देख रहा है। कार्लसन दर्शक की भूमिका को कितना जरूरी मानती हैं?
बेहद जरूरी। आप कह सकते हैं कि ये कार्लसन के विश्लेषण का एक तरह से केंद्र बिंदु है। वो इस पुरानी सोच को तोड़ती हैं कि दर्शक पैसिव होता है, निष्क्रिय।
तो फिर दर्शक क्या है?
उनके अनुसार दर्शक सक्रिय रूप से, एक्टिवली, मतलब बनाने में हिस्सा लेता है। परफॉर्मेंस का जो अर्थ है वो सिर्फ स्टेज पे तय नहीं होता, बल्कि स्टेज और दर्शक के बीच जो एक इंटरैक्शन होता है, उस लेन देन में बनता है।
अच्छा,
थिएटर का जो लक्ष्य है, यानी एक साझा अर्थ बनाना, वो दर्शक के बिना पूरा हो ही नहीं सकता।
पर ये होता कैसे है? दर्शक कैसे एक्टिव होता है? वो तो बैठा ही रहता है।
हर दर्शक अपने अनुभव, अपना ज्ञान, अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अपनी उम्मीदें, इन सब का एक पूरा नजरिया लेके थिएटर में आता है। कार्लसन इसे होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस कहती हैं।
उम्मीदों का दायरा।
हाँ, और इसी नज़रिए से वो स्टेज पर जो हो रहा है उसे समझता है, उसकी व्याख्या करता है। जैसे सोचिए, शेक्सपियर के ज़माने के दर्शक, वो शोर मचाते थे, एक्टर से सीधे बात भी कर लेते थे।
हाँ, सुना है।
और आज के दर्शक कितने शांत रहते हैं। तो ये सिर्फ व्यवहार का फ़र्क नहीं है, ये दिखाता है कि समाज में दर्शक की भूमिका और कला से हमारी उम्मीदें कैसे बदली हैं। दर्शक का रोल दर्शक दीर्घा में बैठकर भी एक सक्रिय भागीदारी का है।
ठीक है, दर्शक तो एक्टिव हो गया, लेकिन स्टेज पर जो है, यानी कलाकार, उसका क्या रोल है इस पूरी कहानी में?
कलाकार तो भाई इस पूरी घटना के बिल्कुल सेंटर में है। कार्लसन अभिनय के एक विरोधाभास, एक पैराडॉक्स की बात करती हैं कि एक्टर एक ही समय में खुद भी होता है और वो किरदार भी होता है जिसे वो निभा रहा है।
हाँ, ये तो है।
ये कमाल का बैलेंस है। वो अभिनय की दो मुख्य स्टाइल्स का जिक्र करती हैं, एक जो बाहरी तकनीक पर आधारित है, जहां एक्टर भावनाओं का प्रदर्शन करता है, और दूसरी जो आंतरिक मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद पर है, जहां वो भावनाओं को सच में महसूस करने की कोशिश करता है, स्टैनिस्लावस्की वाला तरीका।
तो क्या कोई एक तरीका का दूसरे से बेहतर है?
नहीं, कार्लसन इन्हें अलग अलग टूल्स मानती हैं, जिनका इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से होता है। जरूरी ये है कि कलाकार का शरीर, उसकी पूरी मौजूदगी ही कम्युनिकेशन का मुख्य जरिया है। आवाज, हाव भाव, चाल ढाल सब कुछ मायने रखता है।
यहीं पर वो प्रेजेंस या करिश्मा वाली बात आती होगी।
बिल्कुल, वो जो एक अनकही सी ऊर्जा होती है ना एक्टर में, जो हमें बांधे रखती है। और हाँ, अभिनय सिर्फ रियलिस्टिक ही नहीं होता, बहुत तरीके हैं, जैसे जापानी नो थिएटर या ब्रेक्ट का गेस्टिस, जो सामाजिक रवैया दिखाने वाला अभिनय होता है। तो कलाकार का रोल सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि अपने शरीर और आवाज से संकेतों के जरिए संवाद करना है, जो थिएटर के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करे।
कलाकार तो हो गया, पर वो बोलता क्या है या करता क्या है? यहाँ पर लिखित पाठ यानी स्क्रिप्ट की बात आती है। स्क्रिप्ट और परफॉर्मेंस में ज्यादा जरूरी क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि स्क्रिप्ट ही सब कुछ है।
हाँ, ये एक क्लासिक बहस है, खासकर लिटरेरी सोसाइटीज में स्क्रिप्ट को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये माना जाता है कि परफॉर्मेंस तो बस उस लिखी हुई चीज का एक चित्रण भर है। लेकिन कार्लसन इस सोच को चैलेंज करती हैं।
वो कैसे?
वो कहती हैं कि टेक्स्ट, जो स्क्रिप्ट है, वो तो बस एक नक्शा है, या जैसे म्यूजिक के नोट्स होते हैं ना, वैसा है। असली चीज तो वो लाइव परफॉर्मेंस है। उस टेक्स्ट में जान डालने का काम एक्टर, डायरेक्टर, डिजाइनर, ये सब मिलकर करते हैं। और हर बार जब वो ऐसा करते हैं, तो वो उस टेक्स्ट में नए मतलब खोजते हैं, उसे अपने समय, अपने समाज के लिए प्रासंगिक बनाते हैं।
जैसे हैमलेट का उदाहरण आपने दिया था।
हाँ बिल्कुल, नाटक तो वही है, पर उसके कितने अनगिनत मंचन हुए हैं, और हर मंचन एक नई व्याख्या लेकर आता है।
तो क्या परफॉर्मेंस टेक्स्ट से एकदम आजाद है?
आजाद नहीं, पर उसके नीचे दबी हुई भी नहीं है। कार्लसन कहती हैं कि टेक्स्ट और परफॉर्मेंस के बीच एक डायनामिक, एक रचनात्मक रिश्ता है। परफॉर्मेंस टेक्स्ट को जिंदा करती है, उसकी व्याख्या करती है, उसे चुनौती भी दे सकती है। परफॉर्मेंस का लक्ष्य सिर्फ टेक्स्ट को दोहराना नहीं है, बल्कि उसके जरिए एक अनोखा, एक लाइव अनुभव बनाना है।
तो नाटक लिखा गया, एक्टर तैयार हैं, दर्शक भी तैयार हैं, पर ये सब होगा कहाँ? जगह यानी स्पेस का कितना महत्व है? क्या फर्क पड़ता है कि नाटक एक बड़े ऑडिटोरियम में हो रहा है या किसी छोटी सी गली में?
बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कार्लसन इस पर बहुत जोर देती हैं कि थिएटर की जगह सिर्फ एक खाली डब्बा नहीं है, वो अनुभव और अर्थ को एक्टिवली बनाती है, उसे आकार देती है।
जैसे
सोचिए ना, ग्रीस के वो विशाल खुले एम्फीथिएटर, जहां हजारों लोग एक साथ बैठकर नाटक देखते थे, वो जगह खुद एक सामुदायिक रोल निभाती थी, सबको जोड़ती थी।
और आजकल के बंद ऑडिटोरियम, जैसे वो प्रोसीनियम आर्च वाले होते हैं।
हाँ, वो स्टेज और दर्शक के बीच एक पिक्चर फ्रेम जैसा अलगाव बनाते हैं, एक अलग काल्पनिक दुनिया रचते हैं। फिर 20वीं सदी में नए नए प्रयोग हुए, थ्रस्ट स्टेज जो दर्शकों के बीच तक आ जाता है, या अरीना स्टेज जहां दर्शक चारों तरफ होते हैं।
और वो फाउंड स्पेस वाली बात भी थी।
हाँ, यानी किसी पुरानी फैक्ट्री में या सड़क पर या गोदाम में नाटक करना, हर तरह की जगह दर्शक और कलाकार के बीच एक अलग रिश्ता बनाती है, और इससे परफॉर्मेंस का मतलब भी बदल जाता है। तो जगह का रोल सिर्फ बैकग्राउंड देना नहीं है, बल्कि रिश्ते और मायने गढ़ना है।
जगह के साथ साथ डिजाइन के बाकी एलिमेंट्स भी तो हैं, सेट, कॉस्ट्यूम, लाइटिंग, साउंड, क्या ये सब सिर्फ सजावट हैं?
बिल्कुल नहीं, कार्लसन इन्हें भी संकेतों की एक पूरी प्रणाली मानती है। ये सब सजावट नहीं है, ये जानकारी देते हैं, मूड बनाते हैं, और दर्शक जो मतलब निकालेगा उसे दिशा देते हैं।
अच्छा, कैसे?
जैसे कॉस्ट्यूम, वो हमें बता सकते हैं कि किरदार का सोशल स्टेटस क्या है, उसका पेशा क्या है, या शायद उसकी मानसिक हालत कैसी है। लाइटिंग हमारा ध्यान किसी खास चीज पर खींच सकती है, या रहस्य का या खुशी का माहौल बना सकती है। साउंड या म्यूजिक इमोशनल माहौल तय करता है। तो हर डिजाइन एलिमेंट एक चुनाव है, और हर चुनाव का एक मकसद है, कहानी को, विचार को या भावना को ज्यादा असरदार तरीके से पहुंचाना।
और इन सबको एक साथ पिरोने वाला निर्देशक यानी डायरेक्टर, आजकल तो भाई डायरेक्टर को ही शो का कैप्टन माना जाता है, क्या हमेशा से ऐसा था?
नहीं, डायरेक्टर की भूमिका जैसी हम आज समझते हैं, वो दरअसल 19वीं सदी के आखिर में उभरी। उससे पहले या तो जो मुख्य एक्टर होता था, जिसे एक्टर मैनेजर कहते थे, या फिर नाटककार खुद वही ये काम संभालते थे।
तो ये डायरेक्टर का रोल आया क्यों?
थिएटर का स्केल बढ़ने लगा, चीजें ज्यादा जटिल होने लगीं, तो एक यूनिफाइड आर्टिस्टिक विजन, मतलब एक सुसंगत कलात्मक दृष्टि की जरूरत महसूस हुई, तब डायरेक्टर का रोल अहम हो गया।
तो डायरेक्टर का काम क्या है, उसका रोल क्या होता है?
मोटे तौर पर देखें तो दो मॉडल हैं। एक है इंटरप्रेटिव डायरेक्टर, जो नाटककार ने जैसा लिखा है उसके इरादे को ईमानदारी से स्टेज पर लाने की कोशिश करता है।
और दूसरा?
दूसरा है ऑथर, ऑथर डायरेक्टर। ये डायरेक्टर टेक्स्ट को अपनी निजी कलात्मक दृष्टि या अपने संदेश के लिए एक शुरुआती बिंदु की तरह इस्तेमाल करता है। वो टेक्स्ट में बड़े बदलाव भी कर सकता है। कार्लसन कहती हैं कि डायरेक्टर एक तरह से पहला दर्शक होता है। वो तय करता है कि असली दर्शक क्या और कैसे देखेंगे।
अच्छा,
तो उसका रोल इन सारे अलग अलग धागों को, स्क्रिप्ट, एक्टिंग, डिजाइन, स्पेस, इन सब को बुनकर एक कोहेरेंट, एक अर्थपूर्ण अनुभव बनाना है। ऐसा अनुभव जो थिएटर के ओवरऑल लक्ष्य को पूरा करें।
ये तो हुई मुख्य अवधारणाएं। अब अगर हम कार्लसन के काम से जो बड़े विषय या संदेश उभरते हैं उनकी बात करें, तो पहला तो शायद यही कि थिएटर समाज का आईना भी है और उसे बदलने का जरिया भी।
हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। थिएटर सिर्फ समाज को दिखाता नहीं है जैसा वो है, बल्कि उस पर सवाल भी उठाता है, उसे चुनौती भी देता है। ये हमें मुश्किल सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक मुद्दों पर सोचने के लिए एक, कह सकते हैं, एक सुरक्षित लेकिन उत्तेजक जगह देता है। चाहे वो पुरानी ग्रीक ट्रेजेडी हो या ब्रेक्ट का पॉलिटिकल थिएटर या अपने यहाँ नुक्कड़ नाटक, इसका रोल सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि समाज से बात करना और उसमें दखल देना भी है।
दूसरा जरूरी संदेश लगता है लाइव परफॉर्मेंस की अहमियत और थिएटर एक सिमियोटिक सिस्टम के तौर पर।
बिल्कुल, कार्लसन बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि लाइव सामूहिक अनुभव की जो ऊर्जा होती है, जो इमीडिएसी थिएटर में होती है, वो रिकॉर्डेड मीडिया में नहीं मिल सकती।
सही बात है।
वो जो एक ही पल में, एक ही जगह पर एक्टर और दर्शक के बीच एक रिश्ता बनता है ना, वो बहुत खास होता है। और सेमियोटिक सिस्टम वाली बात कि थिएटर सिर्फ शब्दों से नहीं बोलता, हर संकेत से बोलता है। जैसे इंडिया में लाइव क्रिकेट मैच देखने का या किसी संगीत कॉन्सर्ट में जाने का जो अनुभव है, वो टीवी पर देखने से एकदम अलग होता है ना।
हाँ, बिल्कुल अलग।
थिएटर का लाइव होना उसके रोल का एक बहुत अहम हिस्सा है।
एक और विषय जो उभरता है वो है थिएटर की ग्लोबल डाइवर्सिटी, मतलब दुनिया भर में विविधता, लेकिन साथ ही कुछ यूनिवर्सल पैटर्न्स भी।
हाँ, कार्लसन दिखाती हैं कि थिएटर दुनिया की लगभग हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में मौजूद है, लेकिन हर जगह उसका रूप अलग है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, सबकी अपनी परंपराएं हैं, अपने नियम हैं।
जैसे भारत में ही कितनी विविधता है।
बिल्कुल, संस्कृत नाटक से लेकर लोक नाट्य जैसे नौटंकी, यक्षगान और फिर आधुनिक शहरी थिएटर तक, कितनी वैरायटी है। लेकिन इन सब के पीछे वही मूल मानवीय इच्छा काम कर रही है, कहानी कहने की, अनुभव साझा करने की, दुनिया को समझने की। तो थिएटर का रूप भले ही बदलता रहे, पर उसका बुनियादी रोल कमोबेश वही रहता है।
और एक आखिरी मुख्य थीम शायद कि थिएटर बदलता रहता है, अडाप्ट करता है, और वो टेक्स्ट बनाम परफॉर्मेंस वाला तनाव।
हाँ, थिएटर कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है, ये हमेशा बदलता रहा है। नई तकनीक आती है, समाज बदलता है, तो थिएटर भी खुद को ढालता है। लेकिन जो नए प्रयोग होते हैं वो अक्सर इतिहास पर ही टिके होते हैं। और वो जो स्क्रिप्ट और उसकी लाइव व्याख्या के बीच का तनाव है, वो हमेशा बना रहता है। स्क्रिप्ट एक आधार देती है, लेकिन हर लाइव परफॉर्मेंस उसे एक नया जीवन देती है। जैसे अपने यहाँ रामायण महाभारत की कथाएं हैं, सदियों से अलग अलग रूपों में कही जा रही हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल, सच में दिमाग में बैठ जाते हैं। जैसे उनका ये कहना कि थिएटर कलाओं में सबसे क्षणभंगुर है फिर भी सबसे स्थायी है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, विरोधाभासी
है ना। इसका मतलब ये है कि कोई एक नाटक का शो, वो तो उसी पल में होता है और खत्म हो जाता है। आप उसे दोबारा ठीक वैसे का वैसा नहीं देख सकते, वो क्षणभंगुर है। लेकिन थिएटर करने का जो अभ्यास है, जो परंपरा है, वो हजारों सालों से चली आ रही है, वो स्थायी है।
अच्छा,
तो इसका लाइव होना, इसका उसी पल में मिट जाना, वही इसकी ताकत है, वही इसे स्थायी बनाता है। इसका रोल इसी क्षणभंगुरता में छुपा है।
एक और विचार, हर नाट्य प्रदर्शन जीवन का अनुकरण भी है और उस पर चिंतन भी।
मतलब थिएटर सिर्फ जिंदगी की कॉपी नहीं करता, वो हमें जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखने पर, उस पर सोचने पर, सवाल करने पर भी मजबूर करता है। ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक तरह से आत्मचिंतन का भी मंच बन जाता है। इसका लक्ष्य सिर्फ दिखाना नहीं है, बल्कि सोचने पर मजबूर करना है।
और ये वाला मुझे बहुत पसंद आया, अभिनेता का शरीर नाट्य संचार का साधन भी है और संदेश भी।
हाँ, ये लाइव परफॉर्मेंस के जादू को बिल्कुल सही पकड़ता है। एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं है, एक्टर की पूरी मौजूदगी, उसकी एनर्जी, उसके जेस्चर्स, उसकी सांसें, सब मिलकर कहानी कह रहे होते हैं। शरीर ही वहां भाषा बन जाता है।
और आखिर में दर्शकों के बारे में वो क्रांतिकारी विचार, दर्शक नाट्य घटना का अंतिम और अनिवार्य लेखक है।
ये तो कमाल की बात है। मतलब कहानी स्टेज पर शुरू होती है लेकिन पूरी होती है दर्शक के दिमाग में। जो अंतिम मतलब है वो दर्शक ही बनाता है अपनी समझ से। ये दर्शकों को सिर्फ देखने वाले से हटाकर एक एक्टिव पार्टनर बना देता है। थिएटर का लक्ष्य तभी पूरा होता है जब दर्शक उस मतलब बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो।
इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? हम इन आइडियाज का क्या करें?
बहुत कुछ कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि कार्लसन की ये जो बातें हैं, ये हमें सिर्फ थिएटर नहीं बल्कि फिल्में, टीवी शोज, विज्ञापन, यहाँ तक कि अपने आसपास की दुनिया को भी ज्यादा ध्यान से देखने में मदद करती हैं।
कैसे?
हम समझने लगते हैं कि चीजें हमें कैसे दिखाई जा रही हैं और क्यों, कौन सा संकेत क्या मतलब दे रहा है। ये हमें मीडिया को बेहतर ढंग से समझने, उसे डिकोड करने में मदद करता है।
और क्या, ये हमें अपने बारे में भी कुछ सिखाता है?
हाँ बिल्कुल। कार्लसन परफॉर्मेटिविटी की बात करती हैं, जिसका मतलब है कि हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लगातार भूमिकाएं निभा रहे होते हैं।
अच्छा,
जैसे
जैसे
ऑफिस की मीटिंग में हम अलग तरह से व्यवहार करते हैं, किसी शादी ब्याह में अलग, दोस्तों के साथ अलग, हर जगह हम एक अलग किरदार में होते हैं। वहां भी एक तरह की स्क्रिप्ट होती है, कॉस्ट्यूम होते हैं, सेट होता है। इसे समझना हमें अपने सामाजिक व्यवहार को और जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। हम समाज में अपने रोल को ज्यादा सजग होकर देख सकते हैं।
और क्या इससे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी सुधर सकते हैं?
हाँ जरूर। दुनिया को संकेतों की एक प्रणाली, एक सेमियोटिक सिस्टम के रूप में पढ़ना सीखना, ये आज के मीडिया वाले जमाने में बहुत जरूरी स्किल है। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ शब्द ही मायने नहीं रखते, बॉडी लैंग्वेज, आवाज का टोन, हम स्पेस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सब कैसे संदेश देते हैं। एक्टर्स की तकनीकों से सीखकर हम बेहतर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। और साथ ही ये समझना कि जो लाइव इवेंट्स होते हैं, सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, वो क्यों खास होते हैं, चाहे वो नाटक हो या कोई त्योहार, समुदाय बनाने में उनका क्या रोल है, ये भी एक अहम सीख है।
तो इस पूरी चर्चा से अगर एक दो मुख्य बातें घर ले जानी हो तो वो क्या होंगी?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि थिएटर सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है, ये एक जरूरी, एक मौलिक सांस्कृतिक गतिविधि है। समाज को समझने, समुदाय बनाने और खुद को डेवलप करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है ये। इसका हजारों सालों से चलते आना ही बताता है कि कितना महत्वपूर्ण है। हमें लाइव थिएटर को वैल्यू देनी चाहिए और उससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि उसका रोल आज भी उतना ही रेलेवेंट है।
और मेरे लिए ये अंतर्दृष्टि कि थिएटर को समझने के जो तरीके हैं, जैसे संकेतों को पढ़ना, परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, अलग अलग पर्सपेक्टिव को समझना, वो असल में हमें पूरी दुनिया को, कल्चर को और कम्युनिकेशन को ही बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। ये सिर्फ थिएटर की समझ नहीं है, ये जिंदगी की समझ को गहरा करती है। ये दिखाता है कि कला कैसे हमें जीवन के बड़े सवालों से जोड़ सकती है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये जानने के बाद कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी कितना प्रदर्शन शामिल है। हम कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या इससे हमारे अपने सामाजिक रोल निभाने के तरीके पर कोई असर पड़ता है? क्या हम अपने व्यवहार के पीछे के लक्ष्य को लेकर ज्यादा सजग होते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्चुबेंजर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।